अध्याय दो, ब्रह्म जिज्ञासा। इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी किसी अन्य आधार के बिना अब अर्थात जल में कहाँ से कैसे उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य ही ऐसा कुछ न कुछ है जिसके आधार पर इसकी स्थिति संभव हुई है। आत्मजिज्ञासा। सृष्टि रचना की यह कथा बहुत रोचक है। अभी अभी भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है। वह कमल सहसा ही ऊपर उठा और उसने अपनी सूर्य के समान दिव्य कांति से विशाल जल राशि को प्रकाशित कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना अध्ययन के ही वेद विज्ञान स्वरूप विधाता सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बिना प्राकृत जन्म परंपरा के अपने आप प्रकट होने के कारण ही इन्हें स्वयंभू कहते हैं। उस कमल कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे विस्तारित नेत्रों से चारों ओर देखने लगे। इससे उनके चार दिशाओं में चार मुख हो गए। उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल की कर्णिका पर विराजमान होने पर भी आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। तब उनके मन में आया, इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन? ब्रह्मा जी के अंतःकरण में स्वतः प्रकट होने वाला सृष्टि का यह प्रथम प्रश्न था, मैं कौन? उनका द्वितीय प्रश्न था, अन्य के बिना यह कमल कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हो गया? इसी से संबंधित तृतीय प्रश्न था, इसका कुछ न कुछ आधार अवश्य है जिस पर यह स्थित हुआ है, वह आधार कौन? इस प्रकार एक आत्मजिज्ञासा ही स्वयं सृष्टि रचना और सृष्टि के आधार के प्रति तीन रूपों में प्रकट हुई। समाधि। इस जिज्ञासा के सहित वे बहिर्मुखी प्रयास पूर्वक कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रविष्ट हुए, किंतु अन्वेषण करते करते नाभिदेश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उस आधार को पा न सके। कमल नाल में तो अंधकार था, अतः उस अपार अंधकार में आत्मसर्ग का यानी अपने ही उत्पत्ति के केंद्र का अन्वेषण करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। अंत में विफल मनोरथ हो वे लौट आए। वह पुनः अपने स्थान पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीत कर चित्त को वृत्ति रहित किया और समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के समान काल तक योग में प्रवृत्त रहने से उन्हें ज्ञान हुआ। तब पूर्व में अपने जिस अधिष्ठान को देखने का प्रयास करने पर भी वे देख नहीं पाए थे, उसे अपने ही अंतःहृदय में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि शेष जी के कमल नाल सदृश गौर व विस्तृत पलंग रूपी विग्रह पर एक पुरुष शयन कर रहे हैं। उन पुरुषोत्तम की देह का परिमाण स्वमान से तीनों लोकों तक विस्तृत है, यानी तीनों लोकों तक इसका विस्तार है। शेष शैया पर शयन करते हुए ऐसे पुरुषोत्तम भगवान नारायण के दर्शन करते ही वे भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। आत्मचैतन्य। पुराण पुरुष की स्तुति करके वे थके से होकर मौन हो गए। विषादग्रस्त चित्त वाले ब्रह्मा जी का लोक रचना विषयक अभिप्राय जानकर भगवान कहने लगे, वेद गर्भ, वेद विज्ञान तो तुम्हारे भीतर ही प्रतिष्ठित है। तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम मेरे ही आश्रित विद्या अर्थात मेरे आश्रय बोध पूर्वक एक बार और तप करो। उन आश्रय और तप के द्वारा तुम आवरण रहित लोकों को अपने ही हृदय में देखोगे। तब भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोकों में और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। अब तत्व पुराणों की सरस शैली में कितनी सुंदर परंपरागत रीति से सृष्टि रचना का वैज्ञानिक क्रम समझाया गया है, पर वर्तमान में यह दुर्बोध होने से हम इसे युगानुसार विस्तार देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में केवल अप तत्व ही सर्वत्र व्याप्त था। उसमें शेष शैया पर भगवान नारायण शयन कर रहे थे। यह अप शब्द आपलृ लंभने व आपलृ व्याप्तो धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका व्याकरण लब्ध सरल अर्थ है पाना व व्याप्त होना। अतः यहाँ आपह तो सृष्टि का कारक कारण सलिल है। सारी सृष्टि में व्याप्त प्रथम तत्व होने के कारण शास्त्र कहते हैं आपह तनोति, आपह तत्व। आपह तत्व का विस्तार सारी सृष्टि में है। मनु महाराज ने भी सृष्टि रचना के प्रसंग में कहा है कि परमात्मा ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से ध्यान करके सर्वप्रथम अप तत्व की ही सृष्टि की और उसमें बीज को स्थापित किया।
सोभिध्याय शरीरात् स्वात्से सृक्षुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्।
स्वभाव सोपान रसो वैसह, परम तत्व तो रस स्वरूप है ना, अतः चैतन्य स्वरूप ही इस निम्न पद आपह में एक रस गुण के रूप में भासित होता है। यह आपह तत्व न सघन है न विरल ही, यह तो स्वभावतः एक जैसा ही ऐसे सर्वत्र व्याप्त है कि इसके अतिरिक्त कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है। पर सारी सृष्टि को अभिव्यक्ति का अवकाश यही दे रहा है। हाँ, यह मुख्य प्राणमय सत्व तो सारी सृष्टि में एक जैसा ही सर्वत्र व्याप्त एक रस है। हमारी प्रारंभिक धारणा के लिए आचार्यों ने अप तत्व का अर्थ जल कर दिया है, किंतु जल से हम परिचित हैं ना। यहाँ इस जल की चर्चा नहीं हो रही है। यह जल तो सृष्टि रचना के क्रम में आकाश, वायु, अग्नि के पश्चात चतुर्थ तत्व के रूप में प्रकट हुआ है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यह सामान्य जल न तो सारी सृष्टि में एक समान व्याप्त प्रथम तत्व है, इससे सृष्टि के अन्य तत्वों का निर्माण हुआ है, किंतु इस सामान्य जल के अणु भी एक दूसरे से सटे हुए रहने पर भी ठोस जैसे सघन नहीं है। ये तो किसी को भी अपने अंदर सरलता से अवकाश दे देने वाले हैं। साथ ही यह जल तो तरल, रसमय, शुद्ध करने के गुण वाला और प्राणधारक भी है। ये गुण इसे आपह से ही उपहार स्वरूप मिले हैं। अतः सामान्य जल को भी गौण रूप से आपह कह दिया जाता है। अब्ज परम पद से इस निम्न पद में सर्व गुणों को प्रकाशित करने वाला सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। इस अप तत्व से प्रकट व अपरूप ही होने के कारण कमल को अब्ज भी कहते हैं। अप्सु जायते इति अब्जः। इसमें शक्ति समन्वित चैतन्य बीज के रूप में अंतर्यामी भगवान नारायण प्रविष्ट हो गए। इसी पद्म की कर्णिका पर सर्ववेदमय ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए। दिक् काल। ब्रह्मा जी ने लोक जिज्ञासा से आकाश में चारों ओर देखा। यद्यपि वृत्ताकार काल का जन्म तो आपह के साथ ही साथ हो गया था, पर अब ब्रह्मा जी के क्रमशः चारों ओर देखने रूपी कर्म से वृत्त में प्रवृत्ति के रूप में चतुष्कोणात्मक दिक् व साथ ही काल में भी क्रम प्रकट हुआ। इतना निरीक्षण करने पर भी वे अपना व लोकों का रहस्य न जान सके तो सहसा ही आत्मजिज्ञासा प्रकट हुई। इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन? प्रबोध। जब समाधि में अपने ही अंतःकरण में, अपने ही अंतःहृदय में उन्हें अपने अधिष्ठान भगवान नारायण के दर्शन हुए, तब परम आत्मीय भगवान का बहुत सारपूर्ण संबोधन प्रकट हुआ, वेद गर्भ। इस एक ही संबोधन में उनके सारे ही प्रश्नों का बोधन समाया हुआ था। आप स्मरण करिए तो ब्रह्मा जी के मन में तीन प्रश्न उदित हुए थे और बाहर अप व अब्ज में ही इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वे बहुत प्रयत्नशील थे, किंतु बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें वे उत्तर मिल न सके थे। भगवान ने एक ही संबोधन में इन तीनों का एक ही प्रबोध प्रदान कर दिया। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वह उत्तर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही प्रतिष्ठित है। वेद गर्भ, इसके प्रबोध की शक्ति, वेद विज्ञान भी पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तप। तुम कारण सलिल और कमलनाल में ही अपने आश्रय का अन्वेषण कर रहे थे, पर मैंने अपना यह स्वरूप अंतहृदय में ही दिखलाया है। तप 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 करो और अपने ही अंतहृदय में शाश्वत उत्तर को प्राप्त करो। मुझसे ही प्रकट हुए वेदमय तुम सृष्टि की और मुझमें लीन हुई प्रजा की पूर्ववत स्वयं अपने आप से ही रचना करो। सृष्टि रचना की यह मंगलमयी कथा ऋषि मैत्रेय जी परम भागवत विदुर जी को सुना रहे थे। भगवान के लिए भी पुरुष शब्द सुनकर विदुर जी कहीं भ्रांत न हो जाएं, इसलिए यह पुण्य कथा सुनाते समय मैत्रेय जी प्रकृति के लिए प्रधान, हम जीवात्माओं के लिए पुरुष और भगवान के लिए पुरुषेश्वर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, तस्मा एव जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर। जैसा पुरुषेश्वर ने कहा था वैसे ही ब्रह्मा जी ने एक बार और परम आत्मस्वरूप भगवान नारायण में अपने आत्मभाव को समर्पित करके दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। प्रबल तप और परमात्म स्वरूपाश्रित विद्या से उनका विज्ञान बल बहुत बढ़ गया और उन्होंने वायु को आत्मसात कर लिया। सृष्टि विस्तार। जिस पर बैठे थे उस आकाशव्यापी पुष्कर अर्थात पुष्टि करने वाले कमल को देखकर उन्होंने ऐसा चिंतन किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। परम पद स्वरूप भगवान के द्वारा सृष्टि कर्म के विशिष्ट पद पर नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस पद्म से आत्मयुक्त होकर उस एक ही के भू भुवः स्वः तीन भाग किए। यद्यपि वह परिणामी सत्व वाला सर्वगुणात्मक पद्म इतना बड़ा था कि उसे 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विस्तार दिया जा सकता था, हम सभी जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों की विशेष रूप से रचना हुई है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं उन्हें इस धर्म के फल स्वरूप परमेष्टि अर्थात महः जनः तपः सत्यलोक की प्राप्ति होती है। शब्द कौशल। कथा वक्ता का कौशल देखिए तो एक ही कमल की चर्चा कितने शब्द रूपों में करते हैं। जब वे इसकी सृष्टि के कारक कारण सलील से उत्पन्न होने की चर्चा करते हैं तब वे इसे अब्ज अर्थात अप से उत्पन्न होने वाला अपरूप कहते हैं, और जब इसी कमल से लोकों की रचना का संकल्प करते हैं ना तब इसे सभी लोगों को पुष्ट करने वाला होने से पुष्कर कहते हैं, और जब इसको एक ही आधार से जोड़े रखकर इसका चरणबद्ध अर्थात पद क्रमानुसार विभाजन करने लगते हैं ना तो इसी कमल को वे पद्म जैसा सार्थक नाम दे देते हैं। यह तो अत्यंत संक्षेप में मात्र संकेत ही किया है। यदि श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द के गूढ़ार्थ और सौंदर्य माधुर्य की विस्तार से चर्चा करने लगे ना तो हमारा जीवन तो इसी में पूरा हो जाएगा। पर यह अमृतमयी कथा पूरी नहीं होगी, इतना रहस्य भरा है इसमें। तत्वधारणा। आहा, श्रीमद् भागवत में कितनी सुंदर और सार की भी सार गर्भित भाषा शैली में शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टि रचना के क्रम को समझाया गया है। भले ही हम इस लोक लुभावन शैली की विस्तार से चर्चा न कर पाएं, तब भी आत्मसंतोष के लिए इसकी एक छोटी सी झलक देखिए तो बहुत गंभीर प्रसंग है। शौनक जी आदि ऋषि और अन्य भगवत भक्त बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत की परम मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। शौनक जी आदि ऋषि कथा के मध्य में भी कभी कभी प्रश्न परिप्रश्न भी कर रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज बहुत कुशलतापूर्वक उन सबका समाधान भी करते जा रहे हैं। राजा परीक्षित की परम गति के साथ ही श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा सुनाई हुई श्रीमद् भागवत की मूल कथा तो अब पूर्ण हो गई है। श्री शौनक आदि ऋषि तो उत्तम मध्यम सभी प्रकार के श्रोताओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं ना। अतः इतने सारे प्रश्न परिप्रश्नों के पश्चात भी मध्यम श्रेणी के श्रोताओं की भगवत तत्व विषयक धारणा और साधन सुविधा की दृष्टि से अब इसी कथा के अवांतर प्रश्न पूछने का सात्विक विचार उनके मन में आया। प्रश्नकर्ता कोई सामान्य जिज्ञासु नहीं, महासत्र के संचालक वयोवृद्ध कुलपति श्री शौनक ऋषि आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, पर बहुत ही विनम्रता से श्री सूत जी से प्रार्थना करते हैं। आप भगवत भक्त और भागवत को तत्वतः जानने वाले हैं, अतः बहुत जानने वालों में भी आप श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम आपसे समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल लक्ष्मीपति की पूजा अर्चना करते समय उनके अंग उपांग आयुध आभूषण आदि रूप की सृष्टि की शाक्त व्यवस्था को जानने वाले तांत्रिक जिस भाव शक्ति के आधार से स्थिर धारण करते हैं, हे कल्याणमय, उनका वर्णन करिए। हम इस क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिया की निपुणता से मरण धर्मा मनुष्य भी अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी महाराज भी उतनी ही विनम्रता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी और आचार्यों ने वेद तंत्र में विष्णु भगवान की वैष्णवी विभूतियों का जो भली प्रकार वर्णन किया है, श्री गुरुदेव को नमस्कार करके मैं आपको वह सुनाता हूँ। पुरुषेश्वर भगवान के चेतना दृष्टित विराट रूप में जो तीनों लोग दिखाई देते हैं, यह विराट रूप आदि में माया से नौ तत्व के रूप में निर्मित हुआ। वह भगवान का ही पुरुष रूप है। शेष शैया सृष्टि का वह पूर्व प्रारंभिक तत्व जिसमें अब आदि क्रम से सृष्टि का विस्तार हुआ है, इस क्रम विस्तार के पूर्व की अविकृत मूल प्रकृति ही उनकी अनंत नामक शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि से युक्त सत्व गुण का ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णन हुआ है। भगवान के इस कुंठा रहित लोक में भगवन मुखी मूल प्रकृति कभी भी विकारग्रस्त होकर परिणाम को प्राप्त नहीं होती, अव्याकृत ही रहती है। अतः इससे ही सृष्टि रचना होने पर भी यह तो शेष ही रहती है। प्रलय के समय संहार क्रम में भी सभी लोग महत्तत्व में और महत्तत्व इसी मूल प्रकृति में लीन होता है, तब भी यह तो शेष ही रहती है। पुरुषोत्तम से युक्त होने के कारण यही पुरुषवाचक संज्ञा को धारण करती है। पुरुष पौरुष अपरिणामी विशुद्ध सत्वमय मूल प्रकृति व परम पुरुष के आभासी संयोग से आपह तत्व से अब जो उत्पन्न हुआ है। सूत्रात्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना विषयक संकल्प के संस्पर्श से इस परिणामी सत्वमय सर्वगुणात्मक पद्म से सृष्टि क्रम में क्रमशः महत्तत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं आदि से युक्त स्वः भुवः भूः आदि लोकों की सृष्टि हुई है। इसी भूलोक पर हम लोग इन्हीं तत्वों के विकारों पंच ज्ञानेंद्रियों पंच कर्मेंद्रियों मन आदि करणों और पंच प्राण पंच महाभूतों से निर्मित शरीरों के प्रति आत्मभाव रखकर बैठे हैं। चैतन्य स्वरूप के मूल प्रकृति से आवृत होने को ही पुरुषोत्तम का शयन कहा गया है। हमारा मूल स्वरूप भी विशुद्ध चैतन्य ही है, पर अपने आत्मस्वरूप को विस्मृत करके छोटे से प्राकृत पुर में ही आत्मभाव रहने से और पुरुषोत्तम के ही अंश होने के कारण जीवात्माओं की शास्त्रीय संज्ञा भी पुरुष ही है। भागवत पद का पुनरावलोकन। हमने अभी ब्रह्मा जी के प्रथम प्रश्न को सुना है। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला यह प्रश्न परंपरा क्रम से हम सभी तक भी आया है। अतः अब तो केवल उनका ही नहीं, हम सबका प्रश्न है। यह प्रथम प्रश्न ही एक दिन पृथ्वी का अंतिम प्रश्न भी बनेगा। पृथ्वी के अंतिम मानव के मन में भी आदिदेव ब्रह्मा जी का यही प्रश्न प्रतिध्वनित होगा, मैं कौन? सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के पूर्व तक हर जागृत जिज्ञासु के मन में उदित होने वाला यह प्रथम प्रश्न अंतिम मानव की दृष्टि से ही नहीं, हमारे लिए भी अंतिम प्रश्न है। सृष्टि के सारे ही व्यावहारिक प्रश्नों के उत्तर मिलने पर भी नए नए प्रश्न उदित होते ही रहते हैं, अतः कभी भी पूर्ण समाधान नहीं होता। पर इस एक ही प्रश्न का उत्तर मिलने के पश्चात कोई भी प्रश्न शेष रहता ही नहीं, इस दृष्टि से भी यह अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न जितना स्वाभाविक है ना, उत्तर भी उतना ही शाश्वत है। रचना के प्रारंभिक क्षण से अब तक बाह्य रूप से सृष्टि में अनेक परिवर्तन हुए हैं, पर अब भी प्रश्न तो वही एक है और इसका उत्तर भी एक ही है। इतना ही नहीं, इसके समाधान की आंतरिक प्रक्रिया भी वही है, इसमें भी अब तक कोई अंतर नहीं आया है। पुरुषोत्तम पूर्ण है, अर्थात अब पूर्ण पुरुषोत्तम से प्रकट होने वाली सृष्टि भी पूर्ण ही है। पुरुषोत्तम तो सृष्टि रचना के पश्चात भी पूर्ण ही है ना, अतः सृष्ट होने पर भी शरीरधारी पुरुषों में भी यह पूर्ण स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। यह पूर्ण स्वरूप प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा जी को भगवान से जो वेद विज्ञान मिला था ना, वह परंपरा क्रम से हम सभी तक भी आया है, अतः यह तो पहले से ही हम सब में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा जी को भी बाहर ढूंढने पर नहीं, भीतर ही प्रतिष्ठित होने के कारण अपने भीतर ही समाधि में समाधान मिला था ना, अतः हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमें भी सृष्टि रचना के वैज्ञानिक स्वरूप को जानना है तो उसका पथ हमारे भीतर ही है। आत्मस्वरूप को जानना है तब भी उसका पथ हमारे भीतर ही है। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि के आधार परमात्म स्वरूप की जिज्ञासा है तब भी समाधान हमारे भीतर ही प्रतिष्ठित है। यह एक ही प्रश्न तीनों रूपों में प्रकट हुआ है, अतः किसी एक उत्तर को पूर्ण रूप से पाने के प्रयास में सबको जाना जा सकता है। पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता। हमारे देह का रचना कौशल इतना अद्भुत है कि सृष्टि में कार्यरत सारे ही नियम उपनियम हमारे और गौ माता के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में प्रतिष्ठित हैं। अतः पिंड ब्रह्मांड की अकल्पनीय एकता स्थापित हुई है। इस एकत्व के कारण ही इन नियमों नियमांतर्गत व्यवस्था व्यवस्था के धारण तत्वों तत्वधारक संचालक देव शक्ति को आत्मसात करते हुए ही हमारी आध्यात्मिक अंतर्यात्रा में प्रगति होती है। हम जानते हैं कि सत्वमय अब्ज ही सृष्टि रचना का उपादान हेतु है। सृष्टि रचना का स्वरूप इतना वैज्ञानिक है कि यह कारण रूप पद्म वैसे के वैसे विद्यमान रहते हुए ही इस सत्वमय कारण में से श्रृंखलाबद्ध रूप से सृष्टि क्रमानुसार सूक्ष्म स्थूल जगत प्रकट हुआ है। कारण सलिल का यह सत्वमय पद्म ही सृष्टि की सभी भाव संवेदनाओं का केंद्र है, व इसके श्रृंखलाबद्ध पद क्रम के कारण ही सारी सृष्टि का सद्भाव पोषण इस पुष्कर से ही होता है। मानव देह में भी सुषुम्ना पथ में मूलाधार से सहस्त्रार तक भाव संवेदनाओं के सात्विक तात्विक केंद्रों के रूप में ये पद्म प्रतिष्ठित है। ब्रह्म कमल अपने मृणाल से आधार से जुड़ा है ना, इसी कारण सारी सृष्टि सृष्टि की सभी प्राकृत अप्राकृत भाव संवेदनाओं के केंद्र सब के सब इस एक सूत्रता में गुंथे हुए हैं। इसी की अनुकृति मानव देह के अंतस्थ पद्म, इन पर आधारित भाव संवेदनाएं, भाव संवेदनाओं की अनुभूति के करण सभी अपने आधार से युक्त ब्रह्मनाल में पिरोए हुए हैं। अतः ये पुष्ट भी रहते हैं और अनुभूति व अभिव्यक्ति की क्षमता भी इनमें सन्निहित रहती है। इस भगवदीय व्यवस्था के कारण ही सात्विक साधना पूर्वक संहार क्रम से इन तात्विक भाव संवेदनाओं को अनुभूत आत्मसात करते हुए ही क्रमशः आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार पूर्वक आत्म परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है। मैं कौन? हमारी वर्तमान स्थिति तो हम जानते ही हैं। सृष्टि क्रम में विकारों के रूप में ही निर्मित होने के कारण हमारे ये इंद्रियां मन तो प्रायः जागतिक विकारों से ग्रस्त ही रहते हैं। तब भी जीवात्माओं का मूल आधार तो चैतन्य ही है। अतः अंतःस्थित स्वरूप के कारण इस आवृत और वृत्तियों के रूप में बार बार परिवर्तित होते रहने वाले मानो वर्षा ऋतु के कृष्ण मेघों से ढका हो, ऐसे हमारे आवरण व विक्षेप से युक्त मन में भी कभी कभी घटाटोप अंधकार को क्षणार्ध के लिए चीर कर अंतर मन को झकझोरती हुई विद्युल्लेखा जैसा नाद ध्वनित होता है, मैं कौन? यह तो हम जान ही गए हैं कि ब्रह्मा जी के समान ही हमारे भी इस एक ही प्रश्न में तीनों प्रश्न समाये हुए हैं और इनका शाश्वत समाधान भी भीतर ही प्रतिष्ठित है। हमारे प्रश्न। आपका इस ओर तो अवश्य ही ध्यान गया होगा कि ब्रह्मा जी के मन में भी सीधे ही यह प्रश्न प्रकट नहीं हुआ था जिसके साथ उनका अहम जुड़ा था, वह भी साथ ही स्फुरित हुआ था। इस कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन है ना? प्रारंभ में हमारा प्रश्न भी ऐसा ही होगा, यह स्थूल शरीरधारी मैं कौन? इस शरीर को पूर्णतया भूलकर प्रश्न होने जैसा अंतिम पुरुषार्थ अभी हम में नहीं है। अभी तो इस शरीर में ही हमारा आत्मभाव है ना? अतः इस शरीर को मिलाकर ही आत्मजिज्ञासा और इस शरीर से ही प्रथम पुरुषार्थ पूर्वक हमारी अंतर्यात्रा प्रारंभ होगी। शरीरस्थ स्व। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने और स्वस्थ व्यक्ति के स्व में स्थित होने के अंतर को तो हम समझते ही हैं। इसी कारण स्व के परम अर्थ को जानने के क्रम में प्रारंभ में ही स्थूल शरीर के हृदय, यकृत, नेत्र आदि अवयवों, अंगों और इनकी स्थूल कार्य प्रणाली के ऊपर उठकर इस शरीर को चैतन्य युक्त भाव संवेदनाओं के घनीभूत पुंज के रूप में ही समझना पड़ता है। सभी शरीरधारियों द्वारा इन भाव संवेदनाओं का निरंतर आदान प्रदान भी हो रहा है। अतः आदान प्रदान करने वाले बाहर भीतर के साधनों और इनकी प्रकृति को भी समझना पड़ता है। अतः हमारे अनुभवी आचार्यों ने जब स्व में स्थित होने के लक्ष्य को लेकर उपदेश प्रारंभ किया है ना, तो वहां सीधे ही शक्ति रूप पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, पंचभूत और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण को मिलाकर 19 तत्वों के संगठित रूप को जीवात्माओं का सूक्ष्म शरीर माना है। हाँ, जैसे स्थूल शरीर है ना, वैसे ही इस स्थूल शरीर और इसकी सभी क्रियाओं के कारक, संचालक, सूक्ष्म व कारण शरीर भी हैं। भाई, जन्म से मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहता है और हमें नए नए स्थूल शरीर मिलते ही रहते हैं। अतः संस्कारों का स्थायी कोष तो इनमें नहीं रह सकता ना। कर्म फल देने की व्यवस्था भी करनी है, और सारी सृष्टि से आदान प्रदान तो तभी हो सकता है जब आंतरिक संबंध बना रहे। ये सब कर्म सूक्ष्म कारण शरीर के आधार से ही संपन्न होते हैं या हो सकते हैं, किंतु इतना सब होने पर भी ये है तो कालांतर में शीर्ण होने वाले शरीर ही। एक बात और भी है, स्वयंभू ब्रह्मा जी की तो दिव्य प्राकट्य से ही कारण शरीर में स्थिति है, अतः वृत्ति रहित होकर समाधिस्थ होना तो उनके लिए सरल है, पर हमारा स्व अहम तो अभी स्थूल शरीर में ही अटका है। अंतर्दृष्टि, हमारी वर्तमान स्थिति के कारण अभी तो हम ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों रूपी करणों को ही समझना प्रारंभ करेंगे। करणों के स्वभाव के प्रति अभी हमारा आत्मभाव है ना, अतः हम इनके नहीं इनके रूप में अपने ही स्वभाव स्वधर्म को जानते हुए धीरे धीरे अंतःकरण में प्रवेश करेंगे। जब इन करणों के रहस्य को भी जान लेंगे ना, तब इनके प्रति आत्मभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसके फल स्वरूप यही प्रश्न थोड़ा गंभीर हो जाएगा, इन करणों का उपयोग करने वाला मैं कौन? हमारे अनुभवी आचार्यों ने तो इन सब करणों से जुड़े अहंकार को भी करण ही माना है, भले ही बाहर नहीं भीतर ही हो। भीतर अंतःकरण का भी अंतिम सिरा ही क्यों न हो, पर तब भी है तो करण ही। तब प्रश्न उठेगा, इस अहंकार रूपी करण को भी उत्पन्न करने वाला आश्रय कौन? करण कारण के इस अंतः संबंध पर हमारी अंतर्दृष्टि टिक जाएगी। करण अनेक हैं, तो क्या कारण भी अनेक हैं? पुरों अर्थात शरीरों में निवास करने वाले पुरुष भी अनेक हैं, तो इन सब को उत्पन्न करने वाला सब में समन्वय सामंजस्य स्थापित करने वाला आश्रय कौन? स्वरूप सिद्धि, एक आत्म परमात्म जिज्ञासा में ही तीनों लोक समाये हुए हैं ना, अतः इसमें सारी सृष्टि का समाधान तो स्वतः हो जाता है। परमात्मा को जानने के प्रयास में सर्वप्रथम आत्मस्वरूप ही प्रकट होता है, वह केवल आत्मस्वरूप को जानने के प्रयास में भी परब्रह्म परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है, और यह अपने से भिन्न नहीं अभिन्न ही होता है। हाँ, आत्मस्वरूप को जाने बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता, और आत्मस्वरूप को जानने के प्रयास में सारी सृष्टि का रहस्य तो अपने आप प्रकट हो जाता है। अंतस्थल में ही आत्मजिज्ञासा पूर्वक आत्मचैतन्य का आंतरिक विस्तार संभव है ना, अतः इनके स्वरूपतः एकत्व का अनुभव भी बाहर नहीं भीतर ही होता है। पंचम वेद के प्राकट्य की पूर्व पीठिका, निश्चय ही वेदों में करण कारण महाकारण के आंतरिक स्वरूप को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से ही उद्घाटित किया गया है, पर सृष्टि सृष्टा के वैज्ञानिक स्वरूप का यह उद्घाटन तो साक्षात अनुभूति ही है, जो वर्तमान में हम सबको सुलभ नहीं है। इसीलिए हमारे जैसे जिज्ञासुओं के लिए महामनीषी श्री व्यास जी ने महाभारत नामक अपूर्व ऐतिहासिक काव्य में वेद विज्ञान को बहुत ही सरलता से परिभाषित किया है। ऐसा अकल्पनीय पुरुषार्थ करने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है, वे महाप्राण धर्म तत्वज्ञ सरस्वती के पवित्र तट पर बैठे हुए मन ही मन विचार करने लगे कि इतना सब करने पर भी मुझे अपूर्णता का अनुभव क्यों हो रहा है? क्या मैंने अब तक परमहंसों को और स्वयं भगवान अच्युत को भी प्रिय भागवत धर्म का मुख्य रूप से निरूपण नहीं किया है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा है?
किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियः परमहंसानां त इव ह्यच्युत प्रियाः।
वे श्री कृष्ण द्वैपायन ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि इतने में देवर्षि नारद जी उस आश्रम में आ गए। पूजन कुशल क्षेम के पश्चात जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो देवर्षि नारद जी ने उनके शोक का कारण पूछ लिया। व्यास जी बहुत सरलता से नारद जी के सद्गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके आगे अपने हृदयगत भावों को प्रकट करके उन्हीं से पूछने लगे।
त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व।
आप तो सभी के अंतःकरण को जानने वाले आत्मसाक्षी हैं, धर्म पालन और व्रतानुष्ठान से पर और अपर ब्रह्म में पूर्ण निष्णात होने पर भी मुझ में जो न्यूनता रह गई है उसे आप अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर बतलाइए। देवर्षि नारद जी तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते ही हैं, अतः तत्काल तत्परता पूर्वक भगवान के निर्मल यश का गान प्रारंभ करके व्यास जी के मनः क्षोभ के कारण की ओर सार्थक संकेत कर दिया। भगवत प्रेम में मतवाले देवर्षि पुनः सत्संग की इस सारस्वत धारा में भागवत धर्म के सार रस स्वरूप लीला को अपने स्वभाव सिद्ध स्वरों में गाने लगे।
विचक्षणो स्यार्हति वेदि तुम विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो।
भगवान अनंत और सर्वव्यापक हैं, कोई अंतर्दृष्टि संपन्न प्राज्ञ पुरुष ही संसार से निवृत्त होकर भगवान के ऐसे स्वरूपानंद का अनुभव कर सकता है, पर जो देह को ही आत्मा मानने वाले अनात्म पुरुष गुणों के वशीभूत होकर कर्म में प्रवृत्त हैं, वे बहिर्मुखी मनुष्य तो भगवान के अनंत स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते। उन सब के लिए हे विभो, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। कितना सुंदर शब्द विन्यास है। पूर्व श्लोक में भगवान के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका गूढ़ार्थ है भगवान अपने अनंत स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते, वे तो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हुए ही शांत जैसे बनकर लीला करते हैं, अतः देहधारियों जैसे सीमित दिखाई देने पर भी स्वरूपतः विभु अर्थात अनंत ही होते हैं। नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित परमहंस ही भगवान के इन लीला गुणों के अनंत स्वरूप का यथार्थ रसास्वादन कर पाते हैं। अतः भगवान की ये परम विशुद्ध लीलाएं परमहंसों को भी प्रिय हैं। इस श्लोक में भगवान और व्यास जी दोनों के लिए विभु शब्द का सार्थक प्रयोग हुआ है। मानो देवर्षि नारद संकेत करते हैं कि आप भी तो अनंत स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण भगवान की लीलाओं के इस रहस्य को जानते हैं कि उनकी लीलाओं की भक्तिपूर्वक धारणा से भी उनके अनंत स्वरूप की धारणा पूर्वक उनकी प्राप्ति संभव है। अतः जनसाधारण के कल्याण के लिए मूढ़ों से महाप्राज्ञ मानवों तक सबके मन को बलात् आकर्षित करने वाली चिन्मय की रसमय लीलाओं का गान करिए। वेदों में भगवान की लीला का सार समाया हुआ है और वेद विज्ञान को समझने से ही भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं के वैज्ञानिक स्वरूप को समझा जा सकता है। अतः महाभागवत व्यास जी ने बहुत अनूठा प्रयोग करते हुए श्रीमद् भागवत में इनके समन्वित स्वरूप को प्रकट किया है। इसीलिए सभी पुराणों का मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सृष्टि के प्रारंभ में स्वतः उत्पन्न होने वाले तीन मूल प्रश्नों सहित इनके ही सारे अवांतर प्रश्नों का भी शाश्वत समाधान है। परमार्थ सिद्धि। हमारा मूल स्वरूप भी सच्चिदानंदमय है और परंपराक्रम से उत्तराधिकार में प्राप्त वेद विज्ञान भी हमारा सत्व ही है। व्यास जी की कृपा से इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की कला भी हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान का आश्रय लेकर तप किया था, इसी से उनका विज्ञान बल बढ़ा था। जो पहले से ही अंतः प्रतिष्ठित है उसको प्रकट करने के लिए भगवदाश्रित तप का ही विधान है। समाधि में ही पूर्ण समाधान समाहित है। वे तो कारण शरीरधारी है ना, अतः उन सत्वमय का तप रूपी पौरुष तो मात्र मन को वृत्ति रहित करके समाधिस्थ होने जितना ही था, पर हमारा अहम तो अभी स्थूल देह में ही है ना, अतः हमें तो मन को वृत्ति रहित करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारा तप तो स्थूल शरीर से प्रारंभ होकर ही निरुद्धावस्था तक पहुंचेगा। इसी में स्वधर्म से प्रारंभ करके क्रमशः चारों पुरुषार्थों का समावेश हो जाएगा। हमारी पुरुषवाचक संज्ञा भी पूर्ण तत्व को प्रकट करने वाली परमार्थ सिद्धि से ही सार्थक होगी। चिन्मय की रसलीला। एक बहुत ही रोचक बात बताऊं आपको? हाँ, बहुत सरल, बहुत 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 सरस। यह तो हम जानते ही हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम तो सृष्टि रचना के पूर्व भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण हैं। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी पूर्ण ही रहेंगे। सृष्टि विस्तार का दायित्व ब्रह्मा जी को दे रखा है ना, अतः वे तो इस प्रपंच से पूर्ण निवृत्त ही हैं। ये पुराण पुरुषोत्तम लीला रस की सिद्धि के लिए अवतरित होते हैं ना, तो इन पूर्ण निवृत्त भक्त वांछाकल्प तरु में भी लीला वृत्ति प्रकट होती है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी किसी न किसी कामना को लेकर हमारे मन में वृत्ति का जन्म होता है और मन की उस अशांत काम वृत्ति को लेकर ही शरीर की सब क्रियाएं होती है। परंतु स्वसुख की कामना रहित भगवत कर्म को ही लीला कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम तो पूर्ण काम है। इन सारी सृष्टि से अभिन्न में तो लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार की कामना की कल्पना भी उदित नहीं हो सकती ना। अतः पुराण पुरुषोत्तम का यह लीला कैवल्य केवल और केवल हमारे लिए ही है। भक्त के परम विशुद्ध मन की भगवत विषयक कामना ही पूर्ण काम भगवान की लीला का हेतु बनती है। अतः भगवान की सरस लीला में हमारा मन भी तन्मय हो जाए तो निष्काम हो जाता है। यह सृष्टि भी भगवान की लीला ही है। सृष्टि के रूप में भी भगवान ही प्रकट होते हैं, किंतु अनेक रूपों में व्यक्त होने पर भी स्वरूपतः तो अव्यक्त ही रहते हैं। अतः अंतस्थल में भगवान के आश्रय पूर्वक तप से ही स्वरूप का साक्षात्कार होता है। भगवान के चिन्मय स्वरूप का अवतरण तो व्यक्त स्वरूप की रसमय लीला है ना। अतः ऐसे रस के संधान में तो स्वतः तप होता है। श्रीमद् भागवत में तप और लीला रस दोनों पथों व इनके समन्वित रूप का बहुत ही सुंदर सार्थक निर्देश है। हम भगवदाश्रित तप पूर्वक भी चित्तवृत्ति रहित होकर स्वरूपानंद में निमग्न हो सकते हैं, और चिन्मय की रसमय लीला में मन निरुद्ध हो जाए तो भी उन्हीं अनंत स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, सभी वृत्तियों का आश्रय हमारी अहम वृत्ति ही है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अहम समर्पित होने से अहम की आश्रित संसार की अन्य सब वृत्तियाँ निराश्रित हो जाती हैं। अतः इन निराश्रित वृत्तियों का निरोध तो अपने आप हो जाता है, सहज ही नहीं सरस रूप से हो जाता है। इसी कारण अनुभवी रसिकाचार्यों ने 10 लक्षणा श्रीमद् भागवत महापुराण के भगवान की मधुराति मधुर लीला प्रकट करने वाले दशम स्कंद को निरोध जैसी परम सार्थक संज्ञा प्रदान की है। पंचम पुरुषार्थ। श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि नित्य और लीला में भेद नहीं है, जो नित्य है उन्हीं की लीला है। अतः यह तो देश काल की मर्यादा से परे नित्य निरंतर होती रहने वाली भगवान की नित्य लीला है। इसीलिए तो नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित मुक्त पुरुषों की भी आस्वादनीय है। भाई, जब तक इस सीमित स्व को लेकर कोई भी कामना शेष है ना, तब तक अहेतु की भक्ति अथवा भगवत प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः श्री सुखदेव जी महाराज जैसे आत्मा राम आत्मकाम परमहंस ही इस प्रेमा भक्ति के उत्तम अधिकारी हैं। इसी कारण परमाचार्य अहम निवृत्ति व सर्वांतःकरण से परिपूर्ण शरणागति पूर्वक भगवत कृपा से प्रकट होने वाले इस भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण इस पंचम पुरुषार्थ को परिपूर्णतम रूप से प्रमाणित परिभाषित व प्रसारित करने वाला सर्वोत्तम शास्त्र है। भक्त भगवत कृपा से हम सभी को अपने पूर्वजों के पावन पद चिन्हों का अनुसरण व भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय से देव दुर्लभ लीलाओं के स्मरण धारण पूर्वक अंतस्थ पूर्णत्व को प्रकट करते हुए नित्य लीला में निमग्न होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य अवश्य होंगे। आहा, तब तो हमारे भी रोम रोम से स्वतः ध्वनित होगा।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।